ओम शांति। यज्ञ स्नेही यज्ञ रक्षक कुशाग्र बुद्धि की धनी आदरणीय उर्मिला दीदी जी हम सबके मध्य हैं। हम करतल ध्वनि से दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बाल्यकाल से ही दीदी की आध्यात्मिकता और समाज के नैतिक और चारित्रिक पुनर्निर्माण में गहरी रुचि रही। आप राजयोग का अभ्यास करते हुए अपनी लौकिक पढ़ाई पढ़ती रही और उसमें मेरिट में आती रही। देखने में भले बहुत साधारण, लेकिन बचपन से ही अपने लक्ष्य के प्रति आप बहुत डिटर्मिंड थे। आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री प्राप्त की और पूरा ही विद्यार्थी काल आप मेधावी छात्रा रही हैं। 1981 में आप विद्यालय के संपर्क में आए और 85 में मानवता की सेवा के लिए आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं और समर्पित किया। आप सेवाओं की अपनी यात्रा में प्रारंभ के 10 वर्षों तक आपने चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं दी और वर्तमान समय मुख्यालय में आप राजयोगी का शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं तो दे ही रहे हैं, साथ साथ ज्ञानमृत मासिक पत्रिका की आप संपादिका हैं, त्रैमासिक हरियाली पत्रिका की आप सह संपादिका हैं। आपकी सेवाओं की सुगंध न केवल भारत और नेपाल में हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने अफ्रीका के कीनिया, थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों में भी बाबा के ज्ञान का नाम रोशन किया है। बाढ़, भूकंप आदि नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे जो राहत शिविर लगाए जाते हैं, उनका संचालन करने का भी आपको अनुभव प्यारे बाबा ने दिया है। आपको लेखनी की कला से भी बाबा ने संवारा है। आपके द्वारा जो लेख हम ज्ञानमृत या और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, वो हम सबके जीवन में परिवर्तनकारिक होते हैं। आपके लेखनी से निकली अमृत संचय के तीनों वॉल्यूम्स जिन भी भाई बहनों ने पढ़े हैं, उनके जीवन में अवश्य सकारात्मक परिवर्तन आया है। आपकी प्रखर वाणी एवं ज्ञान का गहरा मनन चिंतन ज्ञान के अनेक रहस्यों का खजाना होता है, और ऐसा ही एक रहस्य भरा खजाना हम सबके बीच में आज आप रखने जा रही हैं। कर्म फिलॉसफी की सूक्ष्मता, आदरणीय उर्मिला दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का जो हमारा विषय है, चूंकि ये कर्म गति से संबंधित है और हम सब जानते हैं कि लौकिक दुनिया में भी लोगों के मन में कर्मों के बारे में बहुत प्रश्न होते हैं और इस अलौकिक जीवन में भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो आज हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर हमारी इस क्लास में आ जाए। मैं आपको ले चलती हूं 84 में, 2 दिसंबर 1984 में भोपाल में एक विदेशी कंपनी की गैस लीक हुई थी सुबह सुबह। आप में से बहुतों को वो समाचार सुनने को मिला होगा जो उस समय थे, और उस जहरीली गैस के कारण कई लोग तो ऑन द स्पॉट चले गए, कुछ लोगों के शरीरों में डिफेक्ट आया, कुछ लोग बेहोश हो गए। तो वहां सेवा केंद्र पर 2 बहनें थी, एक बहन का नाम छाया था, तो बाबा कहते हैं बच्चे जब कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आओ, मैं समाधान बताऊंगा। तो वो बहनें बाबा की याद में बैठी, बाबा से टचिंग ली और बाबा ने उनको टचिंग दी कि आप रजाई ओढ़ के सो जाओ। जैसे कहीं बदबू आती है तो अपन रुमाल नाक के आगे लगा लेते हैं तो ऑक्सीजन तो मिलती रहती है पर बदबू बंद हो जाती है, तो जब रजाई ओढ़ के सोई तो ऑक्सीजन तो मिलती रही लेकिन जहरीली गैस का असर नहीं हुआ उनके ऊपर। उसके बाद वो मधुबन में आई, तब तो शांतिवन नहीं था, केवल ओम शांति भवन था और वहां उन्होंने अपना अनुभव दादी जी को और सब भाई बहनों को सुनाया। और फिर 10 दिसंबर को प्यारे बाबा का पधरामणी हुई। तो जब बाबा ने मुरली चलानी शुरू की तो एक बच्चे ने बाबा से सवाल पूछा कि बाबा एक साथ इकट्ठी इकट्ठी मृत्यु क्यों होती है, और बाबा ने वो मुरली उसी प्रश्न के उत्तर में और कर्मों की गहन गति समझाते हुए सुनाई। उस मुरली की चर्चा हम बाद में करेंगे, उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूं। जनवरी 2022 में मम्मा की एक मुरली आई थी जिसमें मम्मा ने कहा था कि संसार के लोग जब भगवान को याद करते हैं तो इस रूप में याद करते हैं कि भगवान बहुत डरावना है, भगवान सजा देता है, पाप करने वालों को मार पड़ती है। दुनिया के लोगों को ये तो पता ही नहीं कि सजा तो उसका आखिरी ऑप्शन है, उससे पहले वो धरती पर आकर के ज्ञान देता है, प्यार देता है। तो लोग भगवान से डरते डरते रहते हैं। और आप सबको याद होगा पुराने जमाने में आज से 40-50 साल पहले जब दिवाली आती थी तो सड़क के किनारे पे बहुत सारे लोग बड़े बड़े कैलेंडर लेकर के बैठे रहते थे, क्योंकि दिवाली में सफाई के बाद, सफेदी के बाद जब दीवारें चमक जाती थी तो लोग नए कैलेंडर लगाते थे। और वो सड़क किनारे बैठे लोग जो कैलेंडर बेचते थे उनमें एक कैलेंडर होता था करनी भरनी, उसमें दिखाया गया होता था कि अगर किसी ने चोरी की है तो यमदूत उसके हाथ काट रही हैं, किसी ने व्यभिचार किया है तो उसको कढ़ाई में उबाल रही हैं, किसी ने हत्या की है तो उसको बीच में से चीर रही हैं। और लोग वो कैलेंडर अपने घरों में लगाया करते थे और हम लोग जब किसी के घर जाते थे बचपन में और दीवारों पे कैलेंडर लगे देखते थे तो एकदम सावधान हो जाते थे कि भाई पाप कर्म करेंगे तो जरूर फल मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में ग्लोबलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, विदेशी सभ्यता प्रवेश कर गई और हमारे वो पुराने कैलेंडर गायब हो गए। अब ना तो सड़कों के किनारे वो बिकते हैं ना किसी के घरों में वो मिलती हैं। लेकिन हम लोग बाल्यकाल से इतना जरूर जानते थे कि पाप का फल दुख के रूप में अवश्य मिलता है, इसलिए हमें पाप नहीं करना। पाप की गुह्य गति को नहीं जानते थे पर मोटे तौर पे तो जानते ही थे कि दुख नहीं देना है। जब ज्ञान में आए तो बाबा ने कर्मों की गति समझाई और बाबा ने क्या बोला, बाबा ने बोला कि देखो अगर पाप कर्म किया तो यहां तो दुख मिलेगा लेकिन जो सूक्ष्म लोक है वहां भी सेकंड में इतनी सजा मिलेगी, एक सेकंड में, कि वो सजा बहुत कड़ी होगी। तो ये बाबा की जब लाइन सुनते हैं तो भाई बहनों के मन में फिर सवाल पैदा होते हैं। पहली बात तो ये कि हमने एक बोला, इतनी देर में एक सेकंड हो गया, भला एक सेकंड में इतनी कड़ी सजा कैसे मिल सकती है। और दूसरी बात, जब शरीर ही नहीं है तो सजा मिलेगी कैसे, क्योंकि शरीर होता है तो पुराने जमाने में लोग शरीर के माध्यम से सजा देते थे, अभी भी जेल में डाल देते हैं, फांसी दे देते हैं। तो जब शरीर नहीं होगा तो भला सजा कैसे मिलेगी? लेकिन कहने वाला कौन है? भगवान है। भगवान के तो सारे काम इस सेकंड में होते हैं। अच्छा, जीवन मुक्ति कितनी देर में मिलती है? सेकंड में ही तो मिलती है। भगवान ने कब कहा कि मैं जीवन मुक्ति 40 साल में देता हूं, 50 साल में देता हूं? हर बार मुरली में आता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जब जीवन मुक्ति सेकंड में मिल सकती है तो क्या सजा सेकंड में नहीं मिल सकती? हम सबको जीवन मुक्ति कितनी देर में मिली? कोई आया, पर्चा पकड़ाया, कहा तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और एकदम क्लिक हो गया, अरे मैं तो आत्मा हूं, और जीवन बदल गया। अगले दिन से बाबा को याद करने लगे, खान पान शुद्ध हो गया, अमृत वेले उठने लगे। तो जीवन मुक्ति कितनी देर में मिली? कितने बरस लगे? एक सेकंड में ही तो अनुभूति हुई कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, और जीवन मुक्त हो गए। जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए। जब बाबा ने यज्ञ रचा कराची में, तो हमारी बड़ी दादी उस समय लगभग 14 साल की थी। दादी को अमृत वेले जैसे एक सपना आता है कि एक बहुत सुंदर बगीचे में श्री कृष्ण जी खड़े हैं, सजे सजाए बांसुरी हाथ में है और मुझे बुला रहे हैं। सपना बड़ा प्यारा लगा, बड़ा अच्छा लगा। बस वही कृष्ण जी दिख रहे हैं, कृष्ण जी दिख रहे हैं। तो दिन में दादी की एक सखी आई, बोली चल भगवान से मिलाती हूँ। तो दादी ने कहा भगवान से मिलना इतना सरल है क्या? बोली यहाँ इतना ही सरल है, तू चल तो सही। तो दादी को लेके बाबा के पास गई, और जैसे ही बाबा को देखा तो जो सपने में देखा था वही दृश्य फिर दिख गए। एक बार बाबा दिखे, एक बार श्री कृष्ण दिखे, जो सपने में दिखा था बाबा दिखे। तो दादी को उसी घड़ी निश्चय हो गया कि यही श्री कृष्ण है, और दादी एकदम निश्चय बुद्धि हो गई कि हाँ मुझे जीवन में जो पानी की आस थी वो मिल गई। तो बताओ जीवन मुक्ति कितनी देर में मिली? कोई लंबा चौड़ा समय मिला क्या, लगा क्या? तो जैसे ज्ञान सेकंड में मिलता और जीवन बदल जाता है, सजा भी सेकंड में ही मिलती है। और फिर कांध झुक जाती है, आत्मग्लानी होती है, पश्चाताप होता है, पद कम हो जाता है, अष्टरतन सामने हैं, भगवान सामने है, जो कल तक नूरे रतन कह रहा था, गोद में बिठा रहा था, पुचकार रहा था, आज उसके सामने गर्दन झुक गई। और जैसे वो अनुभव जीवन मुक्ति का हुआ, 50 साल बीत गए, फिर पूछो दादी पहले दिन का अनुभव सुनाओ, तो दादी को वो पहला दिन फिर जागृत हो जाता है, वही नशा, वही खुशी, वही अनुभूति। तो जैसे वो प्राप्ति का अनुभव जीवन भर चलता है, ये सजा का अनुभव जन्म जन्म चलता है अंदर में आत्मा को, क्योंकि आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, खुशी क्षीण हो गई। सेकंड में सजा मिलती है पश्चाताप और आत्मग्लानी के रूप में। अब बिना शरीर के सजा कैसे मिलती है? अच्छा ये बताइए, प्रेम की अनुभूति कैसे होती है? हम यहां बैठे हैं और आत्मा जाती है परम धाम में, लगता है बाबा अपनी किरणों से दुलार रही हैं, किरणों की गोदी में झूला झूला रही हैं, प्यार कर रही हैं, तो आंखों में आंसू आ जाती है। शरीर ऊपर गया था क्या? भगवान ने प्यार किसको किया? आंखों में आंसू क्यों आए? शरीर तो यही था। कितने भाई बहन भगवान के प्यार में रोज आंसू बहाते हैं, कितने कितने अनुभव करते हैं। कोई को लगता है जैसे मुझे साकार जैसे माता पिता मिल गए, कोई को लगता है मुझे साकार की तरह सर्व संबंधी मिल गया। तो शरीर तो यही है, ऊपर कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा अनुभव कर रही है ना। प्यार का अनुभव अगर आत्मा कर रही है तो मार्ग का अनुभव कौन करेगा बिना शरीर की सूक्ष्म वतन में? उसको भी तो आत्मा ही अनुभव करेगी ना, अनुभूतियां तो आत्मा ही करती। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कर्म की गहन गति समझाई कि आप जितना हो सके अपने कर्मों से उऋण हो जाओ, तपस्या करो, सेवा करो, शुभ सोचो, परोपकार करो, पुण्य का खाता जमा करो, लेकिन आपका कोई पाप कर्म बचना नहीं चाहिए। जो आपको ऊपर जाकर के भुगतना पड़े वो सजा बहुत कड़ी है। अगर मान लो नीचे साकारी शरीर में रहते जीवन में कोई समस्या आती हम ब्राह्मणों के जीवन में आती, तो बाबा कहता है बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। ब्राह्मण परिवार भी आकर के कहता है अच्छा मैं आपके पैसे से मदद करूं, अच्छा आपको कोई और मदद चाहिए तो बताओ, देखो कितने मदद वाले आ जाते। लेकिन जब ऊपर सजा भुगत रही है तब कौन आएगा? भगवान तो धर्मराज बन के खड़ा है और भाई बहन तो हमारे नजदीक भी नहीं आएंगे। जब बाप पिटाई करता है तो कौन बच्चा भाई बहन नजदीक आता है बताओ? कोई छुड़ाने आता है? सबको लगता है हमारी भी बीच में पिटाई हो जाएगी। इसलिए यहां हमारे साथ जो भी कुछ होता है और उसके माध्यम से अगर हमारे हिसाब किताब चुकते होते हैं तो वो बहुत अच्छा है, यही चुकतू हो जानी चाहिए। अब मैं उसी पुराने प्रश्न पे आ रही हूं कि एक साथ इकट्ठी इकट्ठी मृत्यु क्यों होती है? आजकल तो अकाल मृत्यु का बाजार गर्म है, इकट्ठी इकट्ठी भयंकर होती है। बाबा ने जो उसका उत्तर दिया वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम चिंतन करें कि अगर कुछ लोग इकट्ठे मिलकर के एक पाप कर्म करते हैं, एक जानवर को 10 लोग बांधते हैं, आग जलाते हैं और उस भारी जानवर को उठा करके आग में फेंकते हैं, कितनों का योगदान हुआ? 10-20 का तो हुआ, उसको लाना, उसको तड़फाना। अब मान लीजिए कोई ऐसी, अब वो जो जानवर है ना वो भागना चाहता है, बनना भी नहीं चाहता, जलना भी नहीं चाहता, बेबस है, पूरा जोर लगा रखा है कि मैं किसी तरह भाग जाऊं, लेकिन 20 लोग हैं, 10 लोग हैं उसके चारों ओर और वो बेबस जानवर अंदर से चित्कार करता हुआ और प्राण त्याग देता है। जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो इस प्रकार के कर्म करते हैं, बनाने वाले, खाने वाले। अब मान लीजिए यही 10-20 लोग अलग अलग घरों में जन्म लेते हैं, इस जन्म में तो इकट्ठे पाप कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म में, और मान लीजिए एक गाड़ी में ये कहीं जा रही है और गाड़ी चारों तरफ से पूरी तरह से पैक और एकदम गाड़ी को आग लग जाती है, और आग लगते ही जो गाड़ी के दरवाजे हैं वो पूरी तरह से पैक हो जाते हैं, प्लास्टिक पिघल जाता है, खोलने की कोशिश करते कोई दरवाजा नहीं खुलता, ना आगे ना पीछे कहीं भी, बेबस, भागना तो चाहती लेकिन आग इतनी भयंकर है और इतनी तेज गति से भड़कती है कि गाड़ी में जितने भी 10 लोग हैं या जो भी हैं उनका भी वही होता है जो उस जानवर का हुआ था। तो इकट्ठों ने मिलकर के किया और इकट्ठों ने मिलकर के चुकता भी किया। जो बोएंगे वो उगेगा कि नहीं उगेगा? गेहूं बोएंगे, गेहूं उगेगा, मूंग बोएंगे, मूंग उगेगा, चना बोएंगे, चना उगेगा, हिंसा बोएंगे, हिंसा उगेगी, आंसू बोएंगे आंसू उगेंगे, तड़फ बोएंगे तड़फ उगेगी, चित्कार बोएंगे चित्कार उगेगी, और जो उगेगी वो मुझे यूज करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी ही तो बोई हुई है ना। हम बोएं चित्कार और मिल जाए खुशी, कभी ऐसा होता है? गेहूं बोएं और चने उगाएं, आज तक कहीं भी हुआ है क्या? प्लेन में आग लग गई, आसमान में कहीं भागने की जगह नहीं, और टेम्परेचर 2000 डिग्री है। 2000 डिग्री कितना होता है? 100 डिग्री पे पानी उबलता है, उंगली डुबो दो तो क्या होता है हाल, और वो 2000 डिग्री, और उसी में कितने हैं, 200 हैं 300 हैं। तो कभी ना कभी हमने भी ऐसा किया होगा। कई लोग बदला लेने के लिए सोए हुए लोगों के घरों के चारों ओर मिट्टी तेल छिड़क के आग लगा देते, भाग जाते, सोए सोए लोग जल जाते। इसका फल कभी तो निकलेगा ना। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है कि एक बहुत ही गरीब महिला थी, कहीं से आई और उसने वो भड़भुजे होते ना चना भूनने वाले, वो काम शुरू किया। तो वो जो ठाकुर था उस गांव का इतने इतने चने ले आता था, फ्री में भून दे फ्री में भून दे, बेचारी ईंधन कहाँ से लाई। एक दिन कहा मेरे पास ईंधन नहीं है, तो ठाकुर के लोग आ गए, बोला तू मना करती है, और रात को झोपड़ी में सोई थी तो झोपड़ी को आग लगा दी, बेचारी जल गई, जल के मर गई। लेकिन बद्दुआ ऐसे लगी, अगले दिन ठाकुर की हवेली में आग लग गई, पता ही नहीं पड़ा कैसे आग लगी, और पूरी हवेली जल के राख हो गई। ये मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी में लिखा है। अच्छा, एक और दृष्टांत हम लेते हैं। मान लो एक उग्रवादी है, एक बम फेंकता है और 40 लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, बॉडी ढूंढो तो मिल ही नहीं रहा है, और वो उग्रवादी मान लो पकड़ भी लिया गया और उसको हमने फांसी भी दे दी, तो जो न्याय संहिता है वो ये कहती है कि एक हत्या के बदले एक फांसी। अगर नॉर्मल हत्या है तो आजीवन कारावास, पर जघन्य हत्या है तो फांसी। अब ये तो बहुत जघन्य, तो फांसी, पर मारा तो 40 को, फांसी तो एक के बदले हुई, 39 की तो बाकी है ना, अब उसकी सजा कैसी मिलेगी? ये गवर्नमेंट तो केवल एक ही दे सकती है, जीवन ही एक है। अब जो बाकी 39 की सजा है वो प्रकृति देगी, कैसे देगी? बाबा ने मुरली में बोला कि बच्चे इकट्ठी इकट्ठी मृत्यु होती है और इकट्ठी एक साथ होती हैं, क्योंकि अनेक जन्मों का जो कर्म का बोझा है वो सिर पे इकट्ठा हुआ पड़ा है, और वो इस अंतिम जन्म में सारा का सारा जल्दी जल्दी चुकतु होता है। तो जल्दी जल्दी चुकतु होने के दो तरीके हैं, जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु। कलयुग में जन्म बड़ा कष्टकारी है, पहले बच्चा उल्टा लटकता है।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में स्वर्णिम युग है। शिव पिता फिर विकराल विनाश खड़ा आगे।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि जन्म और मृत्यु ये बहुत ही कष्टकारी है। जन्म में भी 9 महीने जैसे काल कोठरी है और मृत्यु भी कितनी कष्टकारी होती है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई सेवा नहीं करता है, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, टाइम पे कोई दाल दलिया नहीं देता है, आवाज लगाता है तो कोई आता नहीं है, लेटे लेटे बेड सोल्स हो गई हैं और भगवान को कहता उठा ले, भगवान भी नहीं उठाता है, 6 महीने हो गए, साल हो गई। तो मृत्यु बड़ी कष्टकारी और जन्म भी बड़ा कष्टकारी। तो कलयुग में जल्दी जल्दी जन्म होकर के हिसाब किताब चुकू होता है, फिर जल्दी जन्म फिर जल्दी मृत्यु। मान लो किसी व्यक्ति की 100 साल आयु है तो 100 साल में केवल एक बार जन्म हुआ और एक बार मृत्यु हुई, पर किसी व्यक्ति की 100 साल में 20 बार जन्म और 20 बार मृत्यु हुई तो उसने कितना कष्ट भोगा, कितनी छोटी आयु मिली। सतयुग में 150 साल आयु थी और ऐसे कपड़े की तरह से शरीर को छोड़ देते थे, कोई कष्ट ही नहीं था। पर कलयुग में तो आयु छोटी है, हर रोज अकाल मृत्यु होती है। तो ये जो अकाल मृत्यु है, छोटी आयु में मृत्यु है, ये पाप कर्म का फल है। लंबी आयु कैसी मिलती है? दुआओं से। कोई बच्चा भाग भाग के काम करता है, आपकी सेवा करता है तो आपके मुख से निकलता है जुग जुग जियो बेटा। और अगर वही बच्चा ऑपोजिट है तो सबके मुख से क्या निकलता है? ऐसा बच्चा तो आगे का सेंटेंस तो आप समझ गए होंगे। तो कलयुग में कितने लोग ये दुआ लेते हैं कि जुग जुग जियो, रेशो कितना होगा? इसलिए वो जो उग्रवादी की मैं बात कर रही थी, वो 39 बार गर्भ जेल में जाए और बाहर निकलेगा, एक बार आंख खोलेगा और फिर आंख मुंद जाएगी, फिर दूसरी मां के गर्भ में जाएगा, वहां उल्टा लटकेगा और वो गर्भ भी ऐसा होगा, बीमारी है, तकलीफ है, कुछ चुभ रहा है, कुछ गलत खाया जा रहा है, कोई गर्भ महल नहीं है, भयंकर गर्भ जेल। जब वो गर्भ में होगा हो सकता है मां 50-60 हजार की दवाइयां फांक जाए। अब जन्म लिया और घर वालों को बड़ी तकलीफ है, अरे हमारे यहाँ तो बच्चा आना था और देखो भगवान ने बच्चा ले लिया। ये आपका था ही नहीं, आपका होता तो रहता, ये तो जेल भुगतने आया था और जेल भुगत के गया। अब यहां एक सवाल और पैदा होता है कि इसने जेल भुगतने के लिए यही मां क्यों चुनी, हमारे घर में क्यों आया? ये मां का क्या दोष, बाप का क्या दोष, दादी नानी बुआ, कईयों ने तो मनोती मांग रखी थी, बुआ तो आश लगा के बैठी थी मुझे बुलाएंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, सबकी आशाओं पे पानी फिर गया। देखिए जब कोई पुण्य कर्म होता है ना उसमें भी सबकी उंगली लगती है। अब ये यज्ञ पाई पाई से यज्ञ खड़ा होता है, तो पाप कर्म कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। अगर कोई बम फेंकता है, कोई उसके कपड़े धोता होगा, कोई उसे खाना खिलाता होगा, कोई उसे घर में छिपा के रखता होगा, कोई उसे बम खरीदने के लिए पैसे देता होगा, कितने लोगों का सहयोग है, एक दो तीन चार नहीं, एक बहुत बड़ा समूह होता है जो उसको सहयोग देता है। तो पाप कर्म को अंजाम देने में जो लोग सहयोगी बने, अब पाप कर्म को भुगताने में भी वही सहयोगी बनेंगे। कोई मां बन के भुगताएगी, कोई नानी बन के भुगताएगी, कोई दादी बन के भुगताएगी, कुछ ना कुछ बन के आएंगे। और ये बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कामों में कभी यहां छिपना पड़ता है तो ये घर चाहिए, पुलिस पीछे लग गई, फिर यहां छिपना पड़ता है तो एक और घर चाहिए, फिर वहां छिपना पड़ता है, कोई दूर तक खाना देने वाला चाहिए, कोई गाड़ी की प्रबंध करने वाला चाहिए, तो हजारों हजार लोग उसमें लगे होते हैं गुप्त और प्रत्यक्ष रूप में। तो इस जन्म में 20-25 ये संबंधी थे, फिर अगला जन्म में और 20-25 संबंधी, फिर अगले जन्म में और 20-25 संबंधी, ये भुगताते गए और ये भुगतता गए। जब तक हिसाब चुकता नहीं होगा तब तक लंबी आयु नहीं मिलेगी। तो एक सजा है कि गर्भ जेल में जाके सजा भुगती जाती है, और एक सजा और भी है, शरीर मिलता ही नहीं। कई बार आपने सुना होगा कि अमुक आत्मा भटक रही है, या जैसे सुना है, मुझे सही नहीं पता, कहते हैं हिटलर की आत्मा को अभी तक भी शरीर नहीं मिला है, उसने गैस चैम्बर में कई लाख यहूदियों को जला के मारा था। तो दूसरों के घर छीनता है, उसे खुद घर नहीं मिलता, भटकता रहता। तो या तो घर नहीं मिलेगा, और घर मिलेगा तो सजा भुगतने के लिए मिलेगा, जीवन जीने के लिए नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। जब हमने द्वापर युग में थोड़े थोड़े पाप कर्म करने शुरू किए तो ये प्रकृति और ये समय और हमारे सराउंडिंग के लोग, उनको ज्यादा अधीरता नहीं थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो अगले जन्म में उतार देगा, अगले जन्म में उतार देगा, अगले जन्म में उतार देगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे जन्म बाकी। लेकिन अब जब हम बिल्कुल अंतिम जन्म में आ गए, सारा विश्व, सारे विश्व की आत्माएं, सबका ही अंतिम जन्म, सृष्टि बची थोड़ी सी, तो प्रकृति भी अधीर है, कहती है जाने से पहले मेरा कर्जा दे के जाना। जैसे मान लो कोई आबू रोड से बॉम्बे शिफ्ट हो रहा हो तो फाइनेंस वाला आएगा, भाई मेरा दे के जाना, सब्जी वाला, दूध वाला, जिससे और कोई कर्ज लिया होगा, भाई पहले मेरा चुकतू कर, मकान बेच रहा है ना तो मेरे को ही बेच दे। तो कई बार आप देखते हो कि कई लोगों को कई तरफ से एक साथ दुखों का पहाड़ टूटता है। मतलब पांव का फ्रैक्चर हो गया, नौकरी छूट गई, बीबी को कैंसर हो गया, बेटा व्यसनी है, पैसे चुरा के ले जाता है, गलियों में पड़ा रहता है, बेटी की ससुराल में हत्या कर दी। तो वो व्यक्ति कहता है मैं खुद को संभालूं कि बीबी को संभालूं कि बच्चे को संभालूं, चारों तरफ से मेरे तो पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि इतने कर्म हैं और जीवन छोटा है, तो वो एक साथ आके कहते हैं हमारा भी चुप तू कर, हमारा भी कर, हमारा भी कर, हमारा भी कर। कलयुग में अति दुख, फिर लोग कहते हैं कि देखो भगवान को दया नहीं आती। भाई कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान तो बहुत दयालु है, भगवान प्रकृति को कहता है कि इसको माफ कर दे, प्रकृति कहती है क्यों, इसने मुझे बहुत सताया, मैं बदला लूंगी। तो भगवान तो दयालु है, सजा भगवान नहीं देता। भगवान से मत डरो, कर्म से डरो। भगवान दयालु है, माफ कर देगा, पर कर्म माफ नहीं करेगा। कर्म छिपाया ना छिपे, और छिपे तो मोटो भाग, और दबी दबाई ना रहे रुई लपेटी आग। और जो कर्म किया वो प्रकट होगा। सात संबंध आड़ा पड़े, खड़ा अगाऊ आए। एक आदमी ने भारत में कर्म किया और लंदन भाग गए, कर्म लंदन में भी सामने आके खड़ा हो गया। वेश बदल लो, देश बदल लो, भाषा बदल लो, कर्म पहचानता है। हजारों गऊओं के बीच में जैसे बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है और वहीं पहुंच जाता है। तो बाबा ने कहा इस समय सबके जल्दी जल्दी चुकतू हो रही। कई बार कोई भाई बहन जब बीमार हो जाते हैं ना, तो कहते हैं देखो मैं 5 साल से ज्ञान में चल रहा हूं और बीमारी आई, या धन का घाटा हो गया, या घर में कुछ और तकलीफ आई, देखो बाबा ने मेरी मदद नहीं की। और भी उसके मित्र संबंधी कहने लगते हैं अरे तू तो ब्रह्मा कुमारियों में जाता है, वहां तो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान ने तेरी मदद नहीं की। अब सोचने की बात है कि ज्ञान में चलते तो 5 ही साल हुए, अब 5 साल में पता नहीं कितना अमृत वेला किया, कितनी मुरलियां सुनी, अगर सुन भी ली तो कितनी धारण की, कितना तन मन धन लगाया, और 63 जन्मों का कई करोड़ का खर्चा था, और 5 साल में कमाया कितना करके 20 लाख कमाया होगा, और कर्जा कितना था 100 करोड़ का। तो क्या 100 करोड़ कर्जा 20 लाख में उतर जाएगा? कमाना तो पड़ेगा, योग तो लगाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा ने तो आपकी बहुत मदद की, लेकिन कर्जा इतना भारी है। यहां जादू से कर्जा कैसे उतरेगा? जादू से कर्जा चढ़ा नहीं, कर्म कर करके, कर्म कर करके कर्जा चढ़ा। तो कर्म कर करके कर्जा उतरेगा। धागा हमने यूं लपेटा तो अब यूं कर करके धागा उतरेगा। जो तरीका करने का है वही तरीका उतारने का भी है। और अगर उतारने समय हम दुखी हो जाते हैं तो वो कर्ज और बढ़ जाता है। एक गरीब आदमी ने एक साहूकार को कहा कि मुझे 1 लाख रुपया उधार दे दे, अर्जेंट जरूरत है। साहूकार को दया आ गई, बोला चल मैं तेरे को 1 महीने के लिए बिना ब्याज के देता हूं, पर देख 1 महीने के बाद लौटा देना। बोला ठीक है। महीना बीत गया, नहीं लौटाया। महीने से 7 दिन ऊपर हो गए, नहीं लौटाया। उसने अपने एक सेवक को भेजा कि जा भाई इसको याद करा, पैसा वापस लौटाना है। तो जैसे ही उस सेवक को देखा उसको गुस्सा आ गया, बोला मैंने तेरे से पैसे कब लिया था, तू कौन होता है मांगने वाला? बोला जी मेरे को मेरे साहब ने भेजा है, आपने 1 लाख रुपया लिया था। बोला अपने साहब को भेजो, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम कौन होते हो मांगने वाले? बोला जी सांप सब जगह थोड़े जाएंगे, हमको ही तो भेजेंगे। और उसको गुस्सा आ गया, उसने उसकी पिटाई कर दी। अब पिटाई कर दी तो FIR, उसके बाद पुलिस, उसके बाद हथकड़ी, उसके बाद 6 महीने की जेल और 50,000 जुर्माना। तो 1,00,000 तो वो था और अब कितना हो गया? 1,50,000 हो गया जेल अलग से। तो वो व्यक्ति तो आपका चुकतू कराने आया था, भाई वापस लौटा दो। अगर आप नम्रता से कह देते कि भाई माफ कर दे, 1 हफ्ता और दे दे, फिर दे दूंगा। आपने तो निमित्त कोई भी बने चुकतू कराने की, लेकिन आप तो उग्र हो गए, ये बीमारी मुझे ही क्यों आई, चोट मुझे ही क्यों लगी, घाटा मुझे ही क्यों लगा, दुनिया में इतने सारे लोग थे। अरे जो हुआ उसको एक्सेप्ट करो तो वो जल्दी चुकतू हो जाएगा। क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ में तो वो बढ़ जाएगा। तो ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। जो भी घटना घटती है उसके पीछे हमारे कई जन्मों का कनेक्शन, जो व्यक्ति हमारे जीवन में आता है उसका भी कई जन्मों का कनेक्शन। कोई हमारा बच्चा बन के आया, बहू बन के आई, कुछ भी बन के आए, एक जन्म का कनेक्शन नहीं। इसलिए अगर हमें कर्मों से उऋण होना है तो जो भी कुछ होता है उसको स्वीकार करें, नम्र होकर के, और उसे सोल्व करें। वो हमसे कुछ मांगता है तो हम दे दें। बाबा ने मुरली में आगे बोला कि वर्तमान समय का जो हिसाब किताब है वो 3 तरीकों से चुकतू हो रहा है, ब्राह्मणों का भी और बाकी आत्माओं का भी। तो उसमें बाबा ने 3 तरीकों में एक तो बताया शारीरिक और मानसिक बीमारियां, दूसरा बताया देह के संबंध और संपर्क, और तीसरा बताया प्रकृति के द्वारा। तो देखो बीमारियां सबको आती है ना, ब्राह्मणों को भी आती है ना। ब्राह्मण परिवार में बड़े से लेके छोटे तक, बाबा मम्मा से लेके दादियों से लेके हम सब जो भी हैं, छोटी मोटी बीमारी आती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था खांसी भी कर्म भोग है, जुकाम भी कर्म भोग है। और एक बार एक दादी ने सुनाया था कि बाबा अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे तो हल्की सी ठोकर लगी थी और चोट लगी थी, तो बाबा ने कहा पता नहीं अभी कितने कर्म भोग बाकी, अगर हमें चोट लगती है, ठोकर लगती है, गिर जाते हैं, तो ये भी हमारा हिसाब किताब है। तो जब बीमारी आती है तो क्या सोचना चाहिए? बीमारी हमारी सखी है, हमारी मददगार है। बीमारी कहती है देख तेरे सिर पे ना 100 करोड़ का कर्जा और तेरी आयु थोड़ी सी बची तो तू उतार नहीं पाएगा, अल्लाह मैं तेरी मदद कर दूं। हम कहते हैं तू क्यों आई, भाग यहां से। वो कहती है मैं मदद करने आई हूं, मुझे स्वीकार कर, कुछ मैं उतरवाऊंगी, कुछ तू बाबा को याद कर, जल्दी उतरेगा कर्जा। पर हम तो बीमारी में दुखी हो जाते हैं। कोई हमसे मिलने आता है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ तकलीफ है, क्या करूं, आधा बीमार उसको भी कर देते हैं, मुंह ऐसा बनाते, वो अगले दिन आता ही नहीं है। फिर हम कहते हैं कोई हमसे मिलने नहीं आता, वो कहता है क्या करें जाके, मुझे बीमार कर देता है वो सुना सुना के। अरे बीमारी आए तो कर्म योग का अनुभव सुनाओ ना, सारा दिन आराम मिला, सारा दिन परम धाम में रहा, ऐसा बाबा से योग लगा, खटिया पे बैठे थाली मिल रही है, वाह बीमारी वाह, ऐसी अनुभव सुनाओ ना, कितने लोग दौड़े दौड़े आएंगे आपका अनुभव सुनने। तो बाबा ने कहा है कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करो, चिल्लाओ नहीं। और मानसिक रोग भी होते हैं, पागलपन है, स्मृति नष्ट हो जाती है, और एक और चीज है जिसको हम कहते हैं ओपरी आत्मा की प्रवेशता। कई भाई बहन पूछते हैं ये आत्माएं होती हैं क्या, बाबा ने मुरली में बोला है? होती हैं। 70 की एक मुरली है उसमें बाबा ने स्पष्ट वर्णन किया है, और एक और मुरली है उसमें बाबा ने बोला कि जिस घर का मालिक कमजोर होता है ना, तो उसके पास तो घर है नहीं, तो वो कमजोर मालिक को देख करके उस घर में प्रवेश कर जाता है। कमजोर मालिक मतलब जिसका मनोबल कमजोर है, तो अपने मनोबल को इतना बढ़ा के रखो ना कि कोई हमें धक्का मार के हमारे घर में ना घुसे। हम इतने ताकतवर हैं कि कोई आ ही नहीं सकता। और एक और भी कारण है, जिसके साथ कर्म का हिसाब किताब होगा उसके पास वो आत्मा आती है, लेकिन अगर हम उसके शुभ चिंतक हैं, शुभ भावना रखते हैं, तो वो हिसाब भी चुकता हो जाता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हमने किसी का बुरा किया ही नहीं तो कोई हमारे पास क्यों आएगा। तो मानसिक और शारीरिक कष्ट, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है देह के संबंध और संपर्क। मतलब बच्चा ऐसा है न रखते बनता है न घर से निकालते बनता है, दिन रात की कलह है। बहू ऐसी आ गई, पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है, जमाई ऐसा है, नजदीक के जो खून के रिश्ते उनमें ऐसी समस्या है कि योग भी नहीं लगता, रात दिन वही चिंतन चलता है, बाबा क्या करूं, तलाक दूं के रखूं, क्या करूं, बच्चे को हॉस्टल में भेजूं के घर में रखूं, घर में भी ठीक से नहीं रहता, हॉस्टल में भी लगता है कुसंग न लग जाए, क्या करूं, लड़की ससुराल में बहुत दुखी है, घर में ले आऊं तो मुश्किल, ससुराल में भी सुखी नहीं है। मतलब संबंध ऐसे ही है, चैन नहीं। तो ये भी कर्मों के हिसाब किताब। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके घर में बेटा बहू थे, कोई था ही नहीं, तो सोचता था बहू मेरी सेवा करे सेवा करे, लेकिन बहू थी बड़ी आधुनिक, दो दो मोबाइल रखती थी, इससे बात कर उससे बात कर, अभी टीवी चला, अभी बाजार जा, चाय देती बना के भूल जाती, ठंडी हो जाती तब पकड़ा के आती। अब बेचारा क्या करे, मन महसूस के रह जाता था, अंदर में सोचता था बड़ा सता रही है पर करूं क्या, बूढ़ा कमरे में पड़ा रहता, दो दिन बाद कमरे की सफाई करती, बदबू आ जाती, ठंडा खाना है, ठंडा दूध, ठंडी चाय, दवाई टाइम पे ना पकड़ाए, बेटे को शिकायत नहीं कर पाता था, बिजी रहता था, सोचता था बेटे को बताऊंगा उसका भी टेंशन बढ़ जाएगा, पर अंदर अंदर बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत परेशान। आखिर उसका शरीर छूट गया, और अंत में शरीर छोड़ते छोड़ते अंतिम संकल्प क्या था, इसको मजा जरूर चखाऊंगा, इसे बदला जरूर लूंगा, बहुत सताया इसने मुझे। और अभी तक इस महिला को कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए बहुत छड़ी मतलब फ्री थी, अभी बाजार गई, अभी पड़ोसियों को चली गई, अभी सहेली से बात कर रही है। और इस बुजुर्ग के जाते ही कुछ समय के बाद ही घर में बच्चे की किलकारियां गूंज उठी। ये तो बड़ी खुशी हो गई कि चलो बुजुर्ग भी गया, मेरे घर में बच्चा भी आ गया, बड़ी मेरे ऊपर कृपा हुई। लेकिन बच्चा पहले तो पेट में ही अपने रंग दिखा रहा है, 50,000 की दवाइयां खा गई, और उसके बाद जब बाहर आया तो उसके बाद कभी कान खींचता है, बालियां खींच के कान में खून निकाल देता है, कभी बाल खींचता है, कभी पेट पे लात मारता है, कभी घर की चीजें फेंक देता है, कभी कुछ करता है, सारी रात रोता है, सोने नहीं देता है। अब इसको तो बड़ा प्यार है बच्चे से, लेकिन बच्चा सता रहा है, थोड़ा और बड़ा हुआ, अलमारी का सारा सामान खींच के पटक देता है, कांच के बर्तन पटक देता है, रसोई का दूध पटक देता है, क्या करे, बच्चे से परेशान है, पर प्यार तो है ना बच्चे से। अब ये बच्चा है कौन मालूम है, ये वही है, कोई बात नहीं, ये बूढ़े के रूप में सेवा नहीं की तो अब तो कर ले। तो जो देह के संबंधी कोई भी संबंध से हमें तकलीफ दे रही हैं, अवश्य ही हमारे ऊपर उनका कर्ज, वो हमसे अपना कर्ज चुकता करवा रही, पूर्व जन्म का है, उससे भी पिछले जन्म का है, कब का है मालूम नहीं पर है। और संपर्क किसको कहते हैं, जैसे बिजनेस का संपर्क है, कॉलेज स्कूल में पढ़ाई की वो संपर्क है, गली मोहल्ले में साथी थे उसका संपर्क है, तो इन लोगों से भी कई बार तकलीफ हो जाती है। कोई बात बात में हमारे खाते के नंबर ले लेता है, उसके बाद पैसे निकाल लेता है। कोई हमारा पार्टनर है, दुकान में हमें धोखा दे देता है। कोई हमारा खेती वाला साझीदार है, खेती में जो उपज होती है उसको मतलब कम दिखाता है, गलत तरीके से बेच देता है। तो कोई हमारे पशु संभालता है लेकिन उसमें हेराफेरी करता है, कोई गौशाला संभालता है दूध में हेराफेरी करता है। तो ये जो संपर्क वाले लोग हैं, ये खून के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन व्यक्ति का संपर्क भी तो बहुत लंबा चौड़ा होता है ना। उसमें अगर हमें कुछ मिल रहा है ऐसा जो हमें नहीं चाहिए, तो वो भी कर्मों का हिसाब किताब है। तो संबंध और संपर्क, और फिर बाबा ने कहा प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के 5 तत्व हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। जल के द्वारा कष्ट, किसी कीमती कागज पे जल गिर गया, रजिस्ट्री थी जल गिर गया, अब वो प्लॉट हाथ से निकल गए, जल घर में घुस गया, बहुत नुकसान कर दिया, कोई जल में डूब गया। जल के बिना कोई प्यास के मारे, वो भी एक तकलीफ है। तो जल से जीवन में कष्ट आना, वायु से कष्ट आना, आंधी आई तूफान आया ना, घर उड़ गया, कीमती चीजें उड़ गई। अग्नि के द्वारा कष्ट आना, अग्नि में जल गए या कोई चीज जल गई। अभी हमारी गाड़ी निकली, कई गाड़ियां निकल गई। जब मेरी गाड़ी निकल रही थी तो पेड़ की टहनी सीधी मेरी गाड़ी के ऊपर ही गिरी। प्रकृति का मेरे साथ हिसाब किताब था, सबकी निकल गई। पहाड़ का पत्थर लुढ़का, मेरी ही गाड़ी को लगा, बाकी सब निकल गई। ये प्रकृति के साथ हिसाब किताब। चूहे ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, मक्खी ने काट लिया। ये जो कोरोना था ये क्या था? ये प्रकृति का प्रकोप था। भूकंप आ गया, जमा पूंजी खलास, कुछ भी हाथ में नहीं बचा। तो प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों से तकलीफ होती है, लेकिन बाबा ने बच्चों को एक गारंटी दे रखी है, हम बच्चों को बाबा ने, कि जो बच्चा लंबे काल से बाबा की याद में है, देखो बहुत काल का बहुत महत्व है, बहुत काल से बाबा की याद में है, बहुत काल से जिसने अपना पुण्य का खाता जमा किया है, अगर प्रकृति का कोई प्रकोप आएगा भी तो जिधर दीवार गिरनी होगी उससे पहले बच्चे को टचिंग आएगी, वो उससे सुरक्षित स्थान पे पहले पहुंच जाएगा। ये बाबा की गारंटी। पर बाबा की याद में जो बच्चा होगा उसको ये मदद मिलेगी। तो बाबा की याद सेफ्टी है। देखो गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई और बाबा का घर सुरक्षित है। नया मकान गिर गया और पुराने में बहनें रह रही हैं, वो सुरक्षित है। तो प्रकृति को जब सूदिंग वाइब्रेशन मिलते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं, तो प्रकृति वहां थम जाती है। वाइब्रेशन में बड़ी ताकत। हम अपने घर में ऐसे वाइब्रेशन फैला करके रखें तो भूकंप हमारे घर का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमारे आश्रम का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। प्रकृति वाइब्रेशन को कैच करती है और उनका आभार मानती है। और फिर बाबा ने यह भी कहा है कि बीमारी में भी बाबा सूली, बड़ी बीमारी आनी थी, वैसे तो बाबा कहते हैं कि बीमारी में भी कल्याण है। थोड़े दिन पहले एक मुरली आई थी, अगर पांव फ्रैक्चर हो गया उसमें भी कल्याण है। क्या कल्याण है भाई? तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है, बाबा तब साकार में था, एक बॉम्बे का भाई था, मधुबन से बाबा से मिलके बॉम्बे जा रहा था, रास्ते में ट्रेन में कुछ हुआ होगा तो पांव को फ्रैक्चर हो गया। बॉम्बे जाके उसने बाबा से बात की, बाबा आप कहते हो पांव फ्रैक्चर हो गया, इसमें भी कल्याण है, भला इसमें क्या कल्याण है। बाबा ने कहा बच्चे तू हमेशा कहता है ना बाबा मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है, अब खटिया पे बैठ और आराम से बाबा को याद कर। फुर्सत मिली ना तो हर बात में कल्याण है, बाबा के बच्चों का हर बात में कल्याण है, इसलिए बाबा के बच्चों को हर बात में वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह हरे मैं वाह, ये मंत्र पक्का रखना। एक बार अपनी पीठ तपतपा लो, वाह हरे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा परिवार, और मैं सदा सुरक्षित हूँ, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अवश्य ही हम सबके बहुत सारे प्रश्नों को विराम चिन्ह लगा होगा दीदी के ज्ञान के गहन चिंतन और इस क्लास से, और सार में हम यही लेके जाएं कि बाबा की याद और बहुत टाइम से पुण्य का खाता ही हमारा सुरक्षा कवच है। तो एक बार आप सबकी तरफ से पुनः दीदी का बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। अभी बैठे रहेंगे, आदरणीय रेवादास भाई जी की क्लास है तो अभी योग के बाद बैठे रहेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।